यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरंजन जन ब्रज जनरं यमुना तीरवनचारी यमुना तीरचारी यमुना तीरवनचारी मुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
ज्ञानतिमिरांध से ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांग सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिवस। इस अवसर पर देश भर में लोग खुशियां मना रहे हैं और खुशी का मौका तो है ही, लेकिन इस मौके के ऊपर थोड़ी और गहराई में स्वतंत्रता इस शब्द का विश्लेषण करना उचित समझता हूं। वास्तव में स्वतंत्र होना इसका क्या अर्थ है? वैसे देखा जाए तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है यह संसार में। राजा से लेकर रंक तक सभी बंधे हुए हैं। जो भी ये भौतिक ब्रह्मांड में हैं, सब बंधे हुए हैं। ये भौतिक संसार एक बहुत बड़ा जेल है, कैदखाना है, और इस कैदखाने में हम सब बंदी हैं। कैद खाने में हम सब अटके हुए हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथों और पैरों में सोने के जंजीर लगे हुए हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिल्वर को क्या बोलते हैं, चांदी, चांदी के जंजीरों से जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। और थोड़े ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ और पैर लोहे से बंधे हुए हैं। एक ऐसे जेल के बारे में सोचिए जहां इस तीन प्रकार के बंदी आपको मिलते हैं। तो अगर वो व्यक्ति जिसके हाथ और पैरों में सोने की जंजीर है, अगर वो उस व्यक्ति की ओर देखेगा जिसके हाथों और पैरों में लोहे की जंजीर है और कहेगा कि देखो मैं कितने अच्छी अवस्था में हूं, देखो मेरे पास कितना सोना है और तुम्हारे पास केवल लोहा है, और तुम्हारे पास केवल चांदी है लेकिन मेरे पास असली सोना है, तो बाहर से जो देख रहा है आदमी वो क्या सोचेगा? सोचेगा कि ये लोग कितने मूर्ख हैं। जंजीर भले ही सोने का क्यों ना हो, हीरे का क्यों ना हो, लेकिन जंजीर आखिर में जंजीर ही है। आदमी जेल के अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं जा सकता, तो फिर ये सोने का क्या कीमत, सोने की क्या कीमत है? उसमें और लोहे वाले में अंतर क्या है? दोनों बंदी हैं, दोनों कैद खाने में बंद हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक संसार में सारे प्राणी कैदी हैं। जो लोग सत्व गुण से बंधे हुए हैं वो ऐसे हैं मानो कोई व्यक्ति सोने के जंजीर से बंधा हुआ है। जो रजोगुण में हैं और रजोगुण से बंधे हुए हैं वो मानो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ और पैर चांदी के जंजीर से बंधे हुए हैं। और जो अन्य व्यक्ति हैं जो तमोगुण से बंधे हुए हैं वो ऐसे व्यक्ति के समान हैं जिनके हाथ और पैर लोहे से बंधे हुए हैं। अभी हम में से सभी लोग उनके हाथों पैरों में जंजीर है। देखिए तो अपने हाथों को, देखिए दिखता है? हम देखेंगे पूरे हमारे हाथ में तो कोई जंजीर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? व्यासासन पर बैठकर बोल रहे हैं कि हम बंदी हैं, हम तो मुफ्त मुक्त हैं, हमारे पास कोई जंजीर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसे जंजीर है जो बहुत खतरनाक है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम बंदी हैं। हम ऐसे एक भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम जेल में हैं। अगर कोई जेल में बंद हुआ आदमी सोचे कि मैं मुक्त हूं, तो जो वास्तव में मुक्त आदमी है उसके बारे में क्या सोचेगा? ये तो पागल है ना? है जेल में बंद लेकिन सोचता है मैं मुक्त हूं। तो ठीक उसी प्रकार से ये संसार में जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, जिन्होंने इस संसार के जन्म चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाया हुआ है, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे लोग संसार के लोगों की ओर देखते हैं और सोचते हैं अच्छा 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 देखो कितने बंधे हुए हैं और सोचते हैं कि मैं मुक्त हूं। तो इस प्रकार से ये बहुत एक करुणा की बात है। करुणा आती है ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में संसार के लोगों के प्रति। ये कितने भ्रम में संसार के लोग चल रहे हैं, सोचते हैं कि मैं कितना स्वतंत्र हूं, मैं कितना मुक्त हूं, मैं अपना ही राजा हूं। हर एक व्यक्ति अपना अपना राज्य बनाना चाहता है। भले अपना राज अपना 200 स्क्वायर फुट वाला घर क्यों ना हो, लेकिन उस घर में तो मैं राजा बनूं। और जितना बड़ा अहंकार होता है उतना बड़ा राज्य बनाना चाहते हैं। फिर 200-300 फुट के घर के बाहर से हम सोचते हैं कि अभी और 500 फुट का राजा बनूं, और फिर समाज का राजा बनूं, देश का राजा बनूं, ब्रह्मांड का राजा बनूं, और फिर मैं खुद भगवान ही बन जाऊं। तो इसलिए ये सब भगवान के माया शक्ति के अलग अलग खेल हैं। ये सब माया की चाल है। माया मतलब भ्रम, माया जो नहीं है वो। तो हम उस भ्रम में पड़े हैं, उस जादूगर के जाल में हम फंसे हुए हैं, जिस जादूगर को हम देख भी नहीं पा रहे हैं। आपने कभी जादूगर के शो में गए होंगे, मैजिक शो में। कई बार जादूगर क्या करता है, एक आदमी को बिस्तर पर लेटाता है और तलवार लेके काटता है और दो भाग को अलग कर देता है, और हम देखते हैं अरे बाप रे ये क्या हो गया, और वो आदमी जीवित है। उसी प्रकार से एक आदमी का हाथ काट देता है और बाद में उसका हाथ फिर से आ जाता है। कभी एक आदमी को डब्बे में बांध कर उसके ऊपर ताला मार देता है, फिर आदमी कहीं और से चले जाता है। तो ऐसे सब जादूगर करता है तो सारे जो दर्शक होते हैं वो वाह वाह करने लगते हैं, अरे क्या है क्या बात है। लेकिन जादूगर क्या कर रहा है, थोड़े तरकीब उसके पास है, कुछ हाथों पैरों से कुछ करता है जिसको हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, और हम सोचते हैं कि क्या जादू कर रहे हैं, क्योंकि वो चतुर है, बहुत बहुत बुद्धिमान है, उसके अंदर कला बहुत है। उसी प्रकार से भगवान के दासी है माया देवी, दुर्गा देवी बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, और इतने चतुर है वो, उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि यहां सारे ब्रह्मांड के जीवों को ऐसे भ्रम में डालते हैं कि हर एक व्यक्ति बंधे हुए होते हुए भी सोचता है मैं मुक्त हूं। सबसे बड़ा चोर कौन होता है, सबसे बड़ा चोर वो होता है जो आपसे चोरी करता है और आपको पता भी ना चले कि चोरी हुआ हो, है ना। तो उसी प्रकार से सबसे चतुर माया देवी है, हमें भ्रम में डालते हैं और पता लगने नहीं देते कि हम भ्रम में हैं। उल्टा ऐसे विचार मन में डालते हैं कि भ्रम तो मैं भ्रम में कभी नहीं आ सकता, मैं तो हमेशा मुक्त हूं। लेकिन माया देवी के चाल से सारा संसार घूम रहा है, हर एक प्राणी चींटी से लेकर बड़े राजा तक माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी सब लोग सोच रहे हैं मैं कितना महान हूं। चींटियों के समाज में भी उनका अहंकार होता है, एक चींटी दूसरे चींटी से सपना समझता है मैं बड़ा हूं। पक्षियों के समाज में, पशुओं के समाज में, मनुष्य के समाज में, हर एक समाज में यही खेल चलता रहा है, माया देवी का खेल ब्रह्मांड भर में, संसार भर में चलता है। और इसलिए हम ऊपर नीचे, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नरक लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी पशु के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में, तो कभी कीड़े के शरीर में भ्रमण करते रहते हैं, हर अवस्था में बंधे हुए, अलग अलग तरह से बंधे हुए होते हैं। कभी जो हमारे जेल के वार्डन है माया देवी, सोने के जंजीर निकालकर लोहे के जंजीर डाल देते हैं, तो कहीं लोहे के निकालकर फिर चांदी के डाल देते हैं। कभी कभी थोड़े ऐसा धातु होता है मिश्रण वाला, थोड़ा सोना थोड़ा चांदी थोड़ा लोहा, तो हम सब जो है एक ऐसे धातु से बंधे हुए हैं जो मिश्रित है, इसमें लोहा भी है चांदी भी है सोना भी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर सत्वगुण का भी प्रभाव है, रजोगुण का भी और तमोगुण का भी। कभी कभी रजोगुण उभर आता है तो उसके लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे क्लास में बैठे हैं तो अभी कितने लोग हम देख रहे हैं, है ना। वातावरण सत्वगुण का है लेकिन अंदर ही अंदर से अपना स्वभाव जो है कभी कभी तमोगुण का प्रभाव जो पड़ जाता है, तो तमोगुण का प्रभाव की वजह से लोग नींद आ जाती है। भगवत गीता का प्रवचन सुनते हुए भी नींद आती है, हरि नाम लेते हुए भी नींद आती है। कभी कभी रजोगुण का प्रभाव आ जाता है, रजोगुण में क्रोध आ जाता है, उत्तेजना हो जाती है, और कभी कभी सत्वगुण, हमें लगता है चलो शांति से बैठो कुछ पढ़ो कुछ करो। लेकिन क्या किसी की मानसिक स्थिति हर समय वैसे ही रहती है, बदलती रहती है। कभी आदमी शांत होता है, कभी उत्तेजित हो जाता है, कभी क्रोधित हो जाता है, कभी सो जाता है, आलसी होता है। इसका मतलब है कि ये तीन गुणों का खेल चल रहा है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके मिश्रण से एक ऐसा खेल है ये सारे संसार में। और हम सब प्राणी जो है कठपुतली है, और जो कि इन तीन गुणों के मिश्रण से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बाएं कभी दाएं, कठपुतली के समान हम इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं मैं सब कुछ कर रहा हूं, वास्तव में तीन गुणों के प्रभाव में आकर हम प्रेरित होते हैं कोई कार्य करने के लिए। कार्य कौन करते हैं, तीन गुण करते हैं, प्रकृति करती है। जैसे एक शराबी है, शराब पीता है, शराब पीने की आदत है, शराब की आदत है वो तमोगुण में है। कभी कभी भक्तों के संग में आकर भी आदमी अच्छी बातें सुन रहा है, लेकिन बाहर जाता है उसको याद आता है कि अरे मुझे शराब पीने का समय हो गया, शराब का अड्डा देखता है, बाहरी शराब का अड्डा है उधर, और जाते हुए देखता है कि अरे कितना अच्छा जगह है। फिर उसे पता नहीं चलता कि कोई एक शक्ति आकर उसे खींच लेती है उस शराब के अड्डे में। अभी अभी प्रवचन सुन के निकला है, लेकिन कोई शक्ति उसे खींच के उधर ले जाती है। इसका मतलब वो एक कठपुतली के समान है, तमोगुण के वश में एक कठपुतली, तमोगुण उसे नचा रहा है और वो नाच रहा है, कभी इधर कभी इस बार में तो कभी उस अड्डे शराब के अड्डे में। इस प्रकार से अलग अलग गुणों के प्रभाव से और अलग गुणों के मिश्रण के प्रभाव से हमारे द्वारा कार्य संपन्न होते हैं और हम सोचते हैं कि मैंने किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा मत सोचो कि तुमने कोई कार्य किया है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। वास्तव में कौन कर रहा है कार्य? प्रकृति है क्रियमाणानि, प्रकृति कर रही है, भौतिक प्रकृति तीन गुणों की, गुण ही सर्वाणि गुण ही प्रकृति क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि कर्मशः, कि प्रकृति के तीन गुण सारे काम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कर्ता हम इति मन्यते, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, करने वाला तो मैं हूं, क्योंकि ये तीन गुण जो है वो भी मेरे वश में है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते से चरा सचराचरम हेतु नाने न कौंतेय जगत विपरिवर्तते, कि हे अर्जुन ये सारी प्रकृति जो है ये मेरे अध्यक्षता में चल रहा है, मेरे निर्देशन में चल रहा है। तो हम तीन गुणों के वश में हैं, तीन गुण माया देवी के वश में हैं और माया देवी भगवान श्री कृष्ण के वश में है। इसलिए हर एक प्राणी यहां पर भगवान के वश में है, ऐसी कोई बात नहीं है जो भगवान के वश के बाहर है। इसलिए बताया जाता है कि कोई पत्ता भी भगवान के अनुमति के बिना हिल नहीं सकता है। तो हम कैसे कोई कार्य संपन्न कर सकते हैं भगवान के अनुमति के बिना? भगवान कृपा देते हैं इसलिए तो हम कार्य कर पाते हैं। हमारे कर्म हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें कोई शक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान, और प्रकृति के गुणों से प्रकृति को प्रेरित करते हैं हमारे शरीर के माध्यम से कार्य संपन्न करने के लिए। तो इसलिए दुर्गा देवी ये बहुत सावधानी से अपने दुर्ग को अर्थात इस भौतिक ब्रह्मांड का संरक्षण करती है। दुर्ग से शब्द आया है दुर्गा, दुर्ग की रखवाली दुर्गा, और दुर्गा के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। त्रिशूल के जो तीन वो क्या बोलते हैं उसे, पॉइंटेड नोक होते हैं, वो क्या है? वो तीन प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, जिनको वो हर प्राणी के ऊपर वो लगाती है, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, जो देवताओं से उत्पन्न होता है, जैसे गर्मी, ठंडी, ज्यादा बारिश, बाढ़, भूकंप इत्यादि। आध्यात्मिक अपने ही शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले जो कष्ट हैं, जैसे मानसिक तनाव, भूख, प्यास इत्यादि। और आखिर में अधिभौतिक, दूसरे प्राणियों से जो उत्पन्न होता है कष्ट हमारे लिए। तो इस प्रकार से दुर्गा देवी का काम क्या है? हमें बांध के रखना। और उन्होंने बहुत सख्ती से तीन गुणों के रस्सी उन्होंने लिए हैं, सोने की रस्सी और लोहे की रस्सी, चांदी की रस्सी। और माया देवी का काम क्या है? हर एक प्राणी को सख्ती से बांध के रखना। बीच बीच में कभी कभी माया देवी रस्सी एक बदलती है, दूसरे से परिवर्तित कर देती है, सोने के रस्सी निकालकर चांदे के रस्सी, चांदी के निकालकर लोहे का, ऐसे परिवर्तन करते रहती है। लेकिन हर एक प्राणी को बांध के रखती है माया देवी। ये माया देवी का काम है। इसलिए जब तक कोई माया देवी या तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो स्वतंत्र नहीं कहला सकता। कोई ना कोई हमारा प्रभु रहेगा ये संसार में। आखिर में तो हमारी इंद्रियां हमारी प्रभु बन के रहेंगी। इंद्रिया कहती है जेको देखो वहां जाओ आइसक्रीम के दुकान में, कितना अच्छा आइसक्रीम कोका कोला मिलता है, जाके खाओ पियो। और मन कहता है देखो कितना अच्छा चित्र दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, टीवी ऑन करो बैठो देखो। तो हमारे जो इंद्रियां हैं हमको प्रेरित कर रही हैं इंद्र तृप्ति के लिए, भोग के लिए। इसलिए आखिर में अंततः हम हमारी इंद्रियों के ही दास बन जाते हैं। कोई संसार में प्रभु नहीं है, हालांकि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं प्रभु हूं। देखिए कितनी अद्भुत बात है, माया की शक्ति देखिए क्या अद्भुत है कि हर एक व्यक्ति दास है लेकिन फिर भी सोचता है मैं प्रभु हूं। तो जब तक हम इन तीन गुणों से हम मुक्त नहीं होते तब तक वास्तविक स्वतंत्रता नहीं आ सकती। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये जो माया है ना ये मेरी दिव्य शक्ति है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया, ये जो तीन गुणों वाली शक्ति है ना मेरी माया शक्ति, ये दिव्य शक्ति है मेरी। मम माया ये मेरी माया शक्ति है, इसलिए भगवान कभी उस माया शक्ति के अधीन नहीं हो सकते, उसके वश में नहीं आ सकते। मम माया दुरत्यया, दुरत्यया का मतलब है कि इसको पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरे शरण में आता है हे अर्जुन, मायाम एताम तरंतिते, बहुत आसानी से मेरे माया शक्ति को पार कर सकता है। अर्थात अगर हमें वास्तव में स्वतंत्र होना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के शरण लेने से भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें संसार से मुक्त करा दूंगा। जब भी हम किसी बड़े घर में जाते हैं जहां संतरी हो, बहुत गार्ड वगैरह हो, चौकीदार हो, और चौकीदार पूछता है कहां जाओगे कौन हो, और जब भी मालिक ऊपर से देखेगा अरे चौकीदार छोड़ो उनको अंदर, तो चौकीदार सुरंत सलाम करेगा जाइए साहब आप जाइए अंदर। लेकिन जब तक मालिक ऊपर से नहीं कहेगा बहस करना पड़ेगा, हम इधर से आए ये काम के लिए आए हैं वो काम के लिए आए हैं। तो उसी प्रकार से हमने इतने जीवन बिताए, अनंत कोटि जीवन बिताए माया देवी के साथ बहस करते हुए, मुझे इधर जाने दो उधर जाने दो ऐसे मुक्त कर दो वैसे मुक्त कर दो। माया देवी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर भी हम पीछा नहीं छोड़ते माया देवी का। लेकिन माया देवी ने भगवान के धाम का गेट बंद करके रखा है, तो भगवान जब बोलेंगे अरे माया देवी जी आप छोड़िए इनको, ये हमारे शुद्ध भक्त हैं, इनको आने दो, ठीक है गेट छोड़ देते हैं, पासपोर्ट वीजा मिल जाता है, बंद करते बाकी लोगों को अंदर। इस प्रकार से कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने से, उनके शरण में जाने से माया देवी के जो हाथ है, जो चंगुल में फंसे हुए हैं, माया देवी उसे छोड़ देगी। लेकिन केवल अपने बस की बात नहीं है ये। जैसे मकड़ी होती है स्पाइडर, मकड़ी क्या करती है जाल बना देती है, सुंदर सा जाल, दिखने में भी बहुत कठिन होता है, मक्खी को दिखाई नहीं पड़ता कि मकड़ी ने जाल बनाया हुआ है। मक्खी उड़ते उड़ते जा रही है आराम से, उड़ने का मजा ले रही है, और उड़ते उड़ते एक सोच रही है आज मैं ऐसा करूंगी मैं वैसा करूंगी आज ये खाऊंगी वो खाऊंगी, तो जाते अचानक जाल में फंस जाती है। उस समय मक्खी क्या करती है, अपने प्रयास से जोर लगाती है तोड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है, जितने ज्यादा मक्खी प्रयास करती है उतने ही ज्यादा सख्ती से वो जाल बंध जाता है। तो इस प्रकार से मक्खी जो मकड़ी है दूर से देख रही है आराम से, ज्यादा संघर्ष करने दो मक्खी को, जितना ज्यादा संघर्ष करेगी उतना ज्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा उसको खाने के लिए। तो उसी प्रकार से माया देवी शांति से देख रही है, क्यों, क्योंकि ये जो अज्ञानी व्यक्ति है संसार में संघर्ष करता है, दिन रात संघर्ष करता है, पैसा कहाँ है, भोग कहाँ है, टीवी कहाँ है, सिनेमा कहाँ है, होटल कहाँ है, गाड़ी बंगला कहाँ है, ये कहाँ वो कहाँ, मंत्री का पद कहाँ है। तो माया देवी देखती है संघर्ष करने दो करने दो, और आखिर में काल रूपी सांप आके खा देता है, मृत्यु मृत्यु आके सब कुछ हरण कर लेता है। कृष्ण कहते हैं मैं ही वो काल हूं, मैं ही वो मृत्यु हूं। जो लोग मेरे में मुझ में विश्वास नहीं करते, मेरा मुख मैं उनको मृत्यु के समय दिखा देता हूं। कौन सा मुख? मृत्यु का मुख, काल का मुख। इतना बड़ा भयंकर मुख होता है और आके मृत्यु के समय सबको, सबका प्राण हरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अज्ञानवश ये संसार में संघर्ष करते रहता है और जो नहीं जानता कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, वो और भी माया के चंगुल में फंसते फंसते उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः शिष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो कहते हैं कि जीव तो मेरा अंश है, लेकिन जीव ये भूल जाता है कि वो मेरा अंश है और ये मन और इंद्रियों को साथ में लेकर ये प्रकृति के संग में संघर्ष करता है। प्रकृति स्थानिक कर्षति, कर्षण मतलब संघर्ष। तो हर एक व्यक्ति ये संसार में संघर्ष कर रहा है, सुबह से रात तक संघर्ष चलता है। तो कैसे स्वतंत्र हुए हम, कैसे मुक्त हुए? अगर वास्तव में हमें इस देश को स्वतंत्र बनाना है तो इस देश की आध्यात्मिक संस्कृति को हमें हृदय से स्वीकारना होगा, नहीं तो यूं ही झंडा ऊपर करने से हम स्वतंत्र नहीं होंगे। कल एक मालिक, आज और एक मालिक, परसों तीसरा मालिक, लेकिन मूल मालिक जो है वो है ही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो रहेंगे। तो इसीलिए यहां जो भारतवासी हैं, भारत के निवासी हैं, भारतवासियों का एक बहुत प्रमुख कर्तव्य बनता है कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश, भगवद गीता के का संदेश को समझें अच्छी तरह से, उसका अमल करें, आचरण करें, उसको अपने जीवन में उतारें, सोच समझकर और फिर अपने जीवन को सफल बनाएं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं ये संसार में हमें सच्चे स्वतंत्रता के बारे में सिखलाने के लिए कि देखो मेरे चिंतन करते रहो, मेरा मेरे लीला मेरे कृष्ण कथा करते रहो, ऐसे करोगे तो मुक्त हो जाओगे। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जान लेता है तत्वतः, पूरी तरह से श्रद्धा से हृदय से, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, साधारण नहीं है, जो इस बात को जान लेता है क्या होता है? माम एति, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। पुनर्जन्म न इति, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता उसे, बारंबार उसे जंजीरों से हाथ बांधने की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, वही एकमात्र मुक्त पुरुष है। संसार में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम कृष्ण की भक्ति करें। कृष्ण की सेवा करते करते ही हम मुक्त हो सकते हैं। और जो भक्त यहां शुद्ध हो जाता है हृदय से, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह से शुद्ध भक्त हो सकता है। जब कृष्ण भगवान आते हैं तो वो कई सुंदर सुंदर लीला यहां प्रदर्शित करते हैं हमारा मन उनकी ओर आकर्षित करने के लिए। और ऐसे लीलाओं के बारे में सुनकर, कथा श्रवण कीर्तन करके, धीरे धीरे से हमारे हृदय में जो भौतिक आसक्ति की गांठ है वो टूट जाएगी, कट काट दी जाएगी। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कृष्ण भक्तों के संग में आएं और कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन करते रहें, और घर में भी गीता भागवत का अध्ययन करें, हरिनाम का जाप और कीर्तन करें, और इस प्रकार से हमें वास्तविक स्वतंत्रता क्या है वो पता चलेगा। वास्तव में एक दृष्टि से देखा जाए तो जीव कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। चाहे जीव माया का दास बने या चाहे जीव कृष्ण का दास बने, दो ही रास्ते हमारे सामने हैं। माया का दास बनेंगे तो बंधन जो बहुत कड़वा होता है, क्योंकि इससे बहुत दुख भुगतना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक जाना पड़ता है। लेकिन जब हम कृष्ण के दास बन जाते हैं तो क्या होता है, आनंद की अनुभूति करते हैं, शाश्वत जीवन की अनुभूति करते हैं भगवान के धाम में। सच्चित आनंद जीवन ये हमें प्राप्त हो सकता है केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से। तो कृष्णदास या मायादास, हमें चयन करना है। आप लोगों को किसका दास बनना है? कृष्णदास। अगर आप मायादास रहेंगे तो आप उदास रहेंगे, कृष्णदास रहेंगे तो क्या रहेंगे? बिंदास रहेंगे, है ना? इसका मतलब है कि खुश होना है आपको तो कृष्णदास बनिए। कृष्णदास हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। और कृष्ण जब आते हैं तो खुद दिखाते हैं कि मैं भी दास हूं। कृष्ण भी कहते हैं मैं भी मेरे भक्तों का दास हूं। जब भगवान खुद अपने भक्तों का के दास हैं तो हम क्यों नहीं दास हो सकते? भगवान वृंदावन में आते हैं तो ऐसे सुंदर लीलाएं करते हैं और हर एक लीला में यह एक ही बात समझाते हैं कि मैं अलग अलग तरह से मैं भक्तों के किस प्रकार से मैं दास हूं। मेरे ग्वाल बाल मित्रों के मैं दास हूं, वो कहते हैं कृष्णा हमको पानी ले आओ जमुना से। हाँ मैं लेके आता हूं, तुम बैठो, भाग के पानी ले आता है। हमें कोई पानी ले आने के लिए भक्त कहता है अरे मुझे क्यों बोलते हो, मैं नौकर हूं क्या? लेकिन कृष्ण भी कहते हैं पानी चाहिए मैं लेकर आता हूं। देखो अपने मित्रों के दास बन जाते हैं। उनके बाबा नंद बाबा जब आते हैं या अपने काम के लिए बाहर वन में जाने के लिए तैयार होते हैं तो कृष्ण से कहते हैं कृष्ण मेरे पादुके ले आओ। तो अगर हमें कोई कहे कि हमारे जूते ले आओ, हम क्या बोलेंगे उनको? क्या बोलेंगे? खैर प्रवचन में चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपने पिताजी के पादुके अपने सर पर रख लिए, सर पर रख के नंद बाबा के पास आए। देखिए जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के जूते भी अपने सर पे रख के वो लाने के लिए तैयार हैं, हालांकि वो छोटे से बालक थे लेकिन हैं भगवान। तो भगवान इस प्रकार से दिखाते हैं हमें हमारे शिक्षा के लिए कि किस प्रकार से हमें दास बनना चाहिए। और उसी प्रकार से उनके सेवक भी होते हैं। द्वारका में भी जब सत्यभामा ने कहा मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए तो ठीक है, बात मान ली। और कभी राजसभा में दरबार में बैठे हुए वो कभी अपने भक्तों से मंत्रियों से प्रश्न पूछते थे कि उद्धव अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये दुविधा में पड़ गया हूं, ये समस्या आई है, अभी क्या करना चाहिए? अभी ऐसी कौन सी बात है संसार में जो कृष्ण को नहीं मालूम? ऐसी कौन सी समस्या है संसार में जिसको पार नहीं कर सकते कृष्ण भगवान, जिसका समाधान कृष्ण नहीं कर सकते? लेकिन फिर भी कृष्ण बतला रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं, मैं मेरे भक्तों के ऊपर निर्भर हूं। इसलिए हर छोटी मोटी समस्या भी आती है तो भक्तों के लिए पुकारते हैं। यहां तक कि वृंदावन में माता यशोदा और जो बुजुर्ग गोपियां थी वो सोचती थी कि अगर हमने कृष्ण का देखभाल नहीं किया तो कृष्ण मर जाएंगे। और इस प्रकार से जाते समय उनके ऊपर मंत्र बोलते थे और नाना प्रकार के उनके विभूति ये वो सब लगाते थे और प्रार्थना करते थे देवताओं से कि मेरे हमारे बच्चे को बचाए रखो। कृष्ण को कौन बचा सकता है? कृष्ण तो परम भगवान है, सर्वशक्तिमान है, कौन उनका कुछ नुकसान कर सकता है? लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसे लीला की, ऐसे बर्ताव किया अपने भक्तों के साथ में कि भक्तों को लगा कि कृष्ण हमारे ऊपर ऐसे निर्भर है कि हम देखभाल नहीं करेंगे तो कृष्ण मर जाएंगे या कृष्ण बीमार हो जाएंगे। तो ये है कृष्ण की लीला। तो अपने ही लीला से, अपने ही व्यवहार से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमें उनका दास बनना चाहिए और उनके दासों का दास बनना चाहिए। ऐसे दासत्व की भावना में ही सच्चा आनंद है और सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति प्रभु बनना चाहता है वो हमेशा दास बनेगा, लेकिन जो दास बनना चाहता है वो प्रभु बनेगा। हालांकि इस गणना से हम आगे नहीं जा सकते, आप अगर एक गणना करेंगे, देखो अभी हमने सुना है कि प्रभु बनने के लिए पहले दास बनना है, तो दास बनो फिर राज करो, तो ऐसे नहीं होगा। जो वास्तव में वैष्णव होते हैं हमेशा दास ही बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि दासत्व की भावना उनके हृदय में इतनी तीव्र है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके पास में इतने सारे लोग भेज देते हैं जो उनके दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह है खूबी। तो सबको दास बनने का ही प्रयास करना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति समझे कि मैं दास हूं दूसरों का, तो कितना सुंदर समाज होगा। लेकिन आजकल के समाज में क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं प्रभु हूं, और फिर टक्कर हो जाते हैं। लेकिन जब हर एक व्यक्ति अपने को अपना वो भक्तों का दास समझता है, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। इतना एक मधुर सुंदर वातावरण हो जाता है, प्रेम का वातावरण। और ऐसे प्रेम के वातावरण में ही वास्तव में मुक्ति स्वतंत्रता है। इहा यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण की सेवा करता रहता है, इहा यस्य हरिर्दासे जो हरिदास है, कर्मणा मनसा गिरा जो अपने कर्मों से अपने शरीर से अपने मन से तन से अपने वचन से कृष्ण की सेवा करते रहता है, जीवन मुक्तः स उच्यते, इस जीवन में जीते हुए भी मुक्त कहलाता है। तो वास्तव में मुक्त बनना है तो कृष्ण भक्त बनना है। ये संदेश भगवद गीता का संदेश है, कृष्ण भगवान का संदेश है। तो यहां सारे जो हमारे भारतवासी हैं, उन सब तक ये संदेश पहुंचाना है कि ये भी समझ लो कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस वास्तव में जब तब होगा जब यह इस देश के लोग इस संदेश को स्वीकार करेंगे और श्री कृष्ण के शरण में जाकर उनके भक्त बनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण